मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। AFEIS के 7 नवंबर 2019 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत हम लोग थोड़ा जो रियल इस्टेट का परिदृश्य है भारत का, उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। आपने कल के न्यूज़ में सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट सुना होगा, बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट। देखिए, कुछ 2-3 दिन से सुप्रीम कोर्ट बहुत कड़ी टिप्पणियां कर रहा है, और ये जो कड़ी टिप्पणियां हैं ये कभी सरकार के प्रति हैं तो कभी प्रशासन के प्रति हैं। एक टिप्पणी आपने 2 दिन पहले सुनी थी कि हम इस तरह से लोगों को मरने नहीं दे सकते, हमारे किसानों के प्रति कोई सहानुभूति इस मामले में नहीं है। अब आप देखिए कि कल सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक क्या टिप्पणी की है, और यह टिप्पणी भी यही दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है, अब तो खैर उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब सब उसके भयानक चपेट में है, उसके बारे में की है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा प्रशासन के बारे में, और चूंकि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जो इस तरह की टिप्पणियां होती हैं इस पर आपकी नजर रहनी चाहिए, बल्कि इन्हें संदर्भ सहित आपको नोट कर लेना चाहिए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन पेपर्स उठा करके देखिए तो मेन एग्जामिनेशन में एक भी साल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिस साल न्यायिक व्यवस्था पर क्वेश्चन न पूछे गए हों, यहां तक कि एक एक साल में 2-2 क्वेश्चन आ गए हैं। यह भी न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी हुई बात है। और अभी जो मैं आपको टिप्पणी बता रहा हूं उसमें आप पाएंगे कि किस तरह से वो प्रशासन पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ और आदेश दे रहे हैं जिसे फिर आप न्यायिक सक्रियता कह सकते हैं, या दबाव न डालने की कोशिश को आप कह सकते हैं कि निर्देश देने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वह स्थिति है जब हम कहते हैं कि नहीं, जो न्यायिक व्यवस्था है भारत की वो कुछ ज्यादा ही सक्रियता दिखा रही है, वो प्रशासन को पंगु बना रही है, इस तरह की बातें फिर दिमाग में आती हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यदि अधिकारी जनता की परवाह नहीं करते हैं तो उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह बात कह रहे हैं, जनता की परवाह नहीं कर रहे हैं, जनता प्रदूषण से उसका दम घुट रहा है लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और बकायदे जो 4 राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज हैं, देखिए उनको कैसे फटकार लगाई है कि आपको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है अगर आप ये व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं कि वो किसानों को पराली जलाने से आप रोकें। आपने क्या किया है कि वो पराली न जलाएं, कि आपने मशीनें उनको दे दी और कोई व्यवस्था की है, क्या किया है आपने? और इस पर फिर उन्होंने निर्देश दिए कि हर किसान को 100 रुपए प्रति क्विंटल पराली की कीमत दी जाए। और अगर सच में अगर सरकार अपनी तरफ से निर्णय ले लेती तो कितना पैसा लग जाता, किसान फिर पराली नहीं जलाते, वो उसको बेचते, उसका फिर आप कुछ भी बना सकते थे, बकायदे बनाया जा सकता है। इसको लेकर के रिसर्च हो चुकी है, बातें भी होती हैं लेकिन किया कुछ नहीं गया। सच पूछिए तो जब दम घुटता है उसी समय बातें होती हैं, और जब वो दम घुटने की स्थिति खत्म हो जाती है तो बातें भी खत्म हो जाती हैं। ये तो हमारे प्रशासन की एक स्थिति है। तो देखिए उन्होंने कितनी कठिन टिप्पणी की है, कड़ी टिप्पणी की है, और ये आपको नोट कर लेनी चाहिए क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं। हमारी भी स्थिति आप यूं समझ लीजिए कि लगभग यही है कि हमें पद पर बने रहने का अधिकार है या नहीं है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इसके बाद आप देखिए कि एक और घटना जो कहीं ना कहीं इसी से थोड़ी बहुत जुड़ी हुई है, और वह घटना है दिल्ली में जो वकील और पुलिस को लेकर के जो एक मुठभेड़ सी हुई और जो हड़ताल की स्थिति बनी, पुलिस और वकील। अब इसमें आप 2 वर्ग देख रहे हैं, एक वर्ग पुलिस का है, दूसरा वर्ग वकील का है। अब ये जो पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्था को बनाए रखने की कहीं जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पुलिस की है। पुलिस बकायदे सशस्त्र बल भी है, कहीं ना कहीं अनुशासनबद्ध सशस्त्र बल, हम प्रशासन की भाषा में कहेंगे। और देखिए जब कोई भी अनुशासनबद्ध सशस्त्र बल हड़ताल करता है, जैसा कि अभी पुलिस वालों ने की है, तो उसे हड़ताल नहीं कहा जाता, उसे बगावत कहा जाता है। अब यह बात अलग है कि जब आप इस तरह के बगावत से निपटते हैं तो वो बगावत राजद्रोह वाली बगावत नहीं होती है, लेकिन सशस्त्र बल के द्वारा की गई हड़ताल सामान्य हड़ताल नहीं होती है। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दूसरे राज्यों में भी फिर धीरे धीरे ये बात बढ़ती जा रही है। कल्पना करके देखिए कि अगर हमारे सशस्त्र बल इस तरीके से करने लगे तो देश की स्थिति क्या होगी। और आपको मालूम है कि 1946 के आसपास जो नेवी वगैरह थे हमारे, जब देश आजादी के दौर से गुजर रहा था, स्वतंत्रता संग्राम के दौर से, तो किस तरह से जब उन लोगों ने हड़ताल की तब फिर अंग्रेज चौके कि भैया अब तो गुंजाइश नहीं है, अब तो इस देश को आजाद करके हमें छोड़कर जाना ही होगा। सशस्त्र बल ये होता है। तो पहले तो आपको ये डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। दूसरे आप देखिए कि वकील हैं, तो वकील बेसिकली न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, ठीक है वो निर्णय नहीं दे रहे, लेकिन निर्णय दिया जाए इसमें वो सहायक तो है। तो न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए, एक लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए हैं, दूसरे न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए। अगर इन दोनों वर्गों में आपस में टकराव की स्थिति बनती है तो आप कह लीजिए कि यह एक गंभीर स्थिति है, सामान्य स्थिति नहीं है। तो इस पर भी बहुत गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए कि ऐसी स्थितियां क्यों आती हैं, इनमें किस किस तरह के सुधार किए जाएं ताकि भविष्य में इस तरह की स्थितियां पैदा न हो। इसको लेकर के बकायदे कल के हिंदुस्तान में एक आर्टिकल भी है विभूति नारायण राय जी का, जो फार्मर आईपीएस ऑफिसर रहे और बेसिकली एकेडमिशियन है, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से मुझे जानने का अवसर भी मिला है। जब आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो कुछ आपको और जानकारियां आसानी से मिल जाएंगी। दोस्तों, एक स्टेटमेंट आपने न्यूज में सुना, जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं उनका स्टेटमेंट था, और वो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि मैड्रिड में होने वाले जलवायु सम्मेलन। तो ये जो मैड्रिड है, स्पेन की राजधानी है, और यहां 2 से 13 दिसंबर को यूएनओ का जलवायु सम्मेलन होगा। बस थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, क्योंकि जो जलवायु सम्मेलन है अब एक तरीके से हॉट सब्जेक्ट, हॉट टॉपिक बन चुके हैं। एक रिपोर्ट छपी है बिजनेस स्टैंडर्ड में मुद्रा योजना को लेकर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। आपको मालूम है कि 2015 में यह योजना लागू की गई थी, और इसका पर्पस था कि जो हमारे छोटे कारोबारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके धन की जरूरत को पूरा करने के लिए इसके तहत ऋण दिया जाता है, और 10 लाख रुपए तक का ऋण इसके तहत दिया जा सकता है। और उस समय इस योजना की बड़ी प्रशंसा भी हुई थी। उस पर एक रिपोर्ट छपी है कि इससे मतलब इसकी क्या स्थिति रही। तो ये बहुत ही सफल योजना मानी गई है, और 2018 तक ये कहा गया है कि इसमें जो इससे जो कर्ज लेकर के जो इंडस्ट्री या उद्योग या अपने व्यवसाय शुरू किए गए, उसमें काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनकी संख्या लगभग 5 करोड़ हो गई है। हालांकि एग्जैक्ट डेटा है 5.04 करोड़, लेकिन आप कह सकते हैं कि वो 5 करोड़ हो गई है। तो एक अच्छी संख्या है, और यहां से जो लोगों ने कर्ज लिया है उन कर्जों के कारण जो आप यूं कह लीजिए कि रोजगार के अवसर जो पैदा हुए उनकी संख्या है लगभग 11 करोड़ के आसपास, मतलब 11 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा किए गए। जिन लोगों ने ऋण लिए उनमें से कुछ लोगों ने तो अपने जो व्यवसाय वो कर रहे थे उसी को और आगे बढ़ाया, या कह लीजिए कि वो खत्म होने की स्थिति में था तो उसको पुनर्जीवित किया। लेकिन एक अच्छा डेटा आप कह लीजिए कि 55% लोग जो ऋण लेने वाले थे उनमें ऐसे थे जिन्होंने स्वरोजगार शुरू किया, मतलब अपने ही रोजगार की शुरुआत की। तो ये एक बहुत बड़ी बात, मतलब कम से कम मुझे तो लगती है कि ऋण लेने के बाद 55% लोग अगर अपना रोजगार शुरू कर पाते हैं तो ये मुद्रा योजना के बारे में एक रिपोर्ट है। लेकिन इसमें यह भी लिखा हुआ कि ये रिपोर्ट अभी सरकार जारी करने वाली है, लेकिन जो मीडिया है उन्हें किसी माध्यम से ये बातें पता लग जाती हैं। और अगर मुद्रा योजना पर सरकार रिपोर्ट जारी करेगी आधिकारिक तौर पर, तो ये मान करके चलिए कि यह टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और वह यही कि किस तरीके से इस तरह के छोटे कारोबारियों को अगर ऋण उपलब्ध कराया जाए तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में क्या उनका योगदान हो सकता है, कितना उससे लाभ मिल सकता है। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और जैसा कि मैंने बताया आज का मुख्य विषय है रियल एस्टेट। और इस विषय को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि आपने न्यूज में एक खबर सुनी है कि भारत सरकार ने रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए, आप देख रहे हैं कि हमारे जो रियल एस्टेट, देखिए जब मैं रियल एस्टेट कहता हूं तो उसका क्या मतलब है। सामान्य तौर पर आप कह लीजिए कि जो मकान बनाए जाते हैं वो रियल एस्टेट के तहत आते हैं, जो हॉस्पिटैलिटी का क्षेत्र है चाहे वो हॉस्पिटैलिटी के लिए आप यूं मान करके चलिए कि होटल बनाए जा रहे हैं वो भी रियल एस्टेट के तहत ही आते हैं, यहां तक कि दुकानें बनाई जा रही हैं, बाजार बनाए जा रहे हैं, कमर्शियल स्पेस बनाए जा रहे हैं, तो वो सब के सब हाउसिंग रियल एस्टेट के तहत ही आते हैं। चूंकि पिछले लगभग 5-6 साल से रियल एस्टेट बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, तो सरकार ने इसको थोड़ा सा सहारा देने के लिए एक वैकल्पिक निवेश कोष की बात कही है, वैकल्पिक निवेश कोष, और इसके तहत 25,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें भारत सरकार 10,000 करोड़ रुपए देगी और बाकी जो धन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जो भारतीय जीवन बीमा निगम है और दूसरी संस्थाओं को भी इससे जोड़ा जाएगा। और ये जो 25,000 करोड़ रुपए का जो फंड होगा इसमें से उन प्रोजेक्ट्स को ऋण मिल सकेगा जो अधूरे पड़े हुए हैं लेकिन वायबल स्थिति में हैं, मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान में चले गए हैं। तो लगभग लगभग 1600 ऐसे आवासीय जो प्रोजेक्ट हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है, और अब ये ऋण लेकर के उन प्रोजेक्ट्स को अधूरे जो पड़े हुए हैं उनको पूरा कर सकेंगे, और इससे लगभग लगभग 4.5 लाख लोग जिन्होंने इसमें पैसा दिया हुआ है कि पूरा हो और उन्हें मकान मिले और अपने मकानों में वो रहने जाएंगे, उनको फायदा पहुंचेगा। और साथ ही साथ इसके तहत उनको भी कर्ज दिया जाएगा जिन्हें बैंकों ने एक तरह से एनपीए में डाल रखा है। मतलब एनपीए में डाल रखा है कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि मेरी एक कंपनी है, मकान बनाने वाली कंपनी, मैंने बैंक से ऋण लिया 100 करोड़ रुपए का कि मैं मकान बनाऊंगा, मैंने वहां से 100 करोड़ रुपए ले लिए, लेकिन जब मैं मकान बनाने लगा तो अधूरा ही पड़ा हुआ क्योंकि उससे अब खरीदार नहीं मिल रहे हैं। तो अब मैं बैंक का पैसा लौटाऊं कैसे, बैंक मुझसे बार बार मांग रही है, मैं उसे वापस नहीं कर पा रहा हूं। नतीजा ये हो रहा है कि बैंक ने परेशान होकर के उसको एनपीए में डाल दिया है कि अब ये पैसा कर्ज, जिसे आप कह लीजिए डूबत खाते में डाल दिया है। तो ऐसे भी जो प्रोजेक्ट हैं वो इस फंड से पैसा ले सकेंगे, तो इससे काफी एक तरीके से कह दीजिए जो रियल एस्टेट का क्षेत्र है उसको बढ़ावा मिल सकेगा। दोस्तों ये जो रियल एस्टेट है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी एक दो बातें बताना चाहूंगा। एक तो ये जो सेक्टर है इसको एक प्रकार से साइक्लिक इंडस्ट्री कहा जाता है। साइक्लिक इंडस्ट्री, साइक्लिक इंडस्ट्री कहने का मतलब है कि जो चक्र के रूप में घूमता है। मतलब ये रियल एस्टेट अगर हम कहते हैं तो अपने आप में ये रियल एस्टेट नहीं है, है ना, ये पूरे के पूरे साइकिल में चलता है। यानी कि यूं कह लीजिए कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अगर एक चीज इसकी टूटती है, एक कड़ी, तो पूरी की पूरी जंजीर पर उसका प्रभाव आता है। खासकर इकोनॉमी के क्षेत्र में ऐसे 14 इंडस्ट्री को चुना गया है जिनका प्रभाव दूसरों पर भी बहुत ज्यादा पड़ता है, और उसमें जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है वो रियल एस्टेट है। कैसे रियल एस्टेट है, जैसे अभी मकानों की मांग रुक गई है, मकान नहीं बिक रहे हैं, तो अब आप देखिए कि मकान नहीं बिक रहे हैं तो ये नहीं कि केवल मकानों की मांग घटी है, मकान नहीं बिक रहे हैं तो सीमेंट की मांग कम हो जाएगी क्योंकि सीमेंट मकान में लगता है, लोहे की मांग कम हो जाएगी, मजदूरों की मांग कम हो जाएगी, ईंटों की मांग कम हो जाएगी, और जो मकान में जितनी सारी चीजें लगती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक वायर लग रहे हों, चाहे स्विच बोर्ड लग रहे हों, जितनी चीजें होती हैं छोटी छोटी चीजें आप देखिए, उन सब की मांग कम हो जाएगी। जब इन सब की मांग कम हो जाएगी तो इससे जुड़े जितने भी इंडस्ट्री हैं उनका, उन पर प्रभाव पड़ेगा। इधर जो मकान बनाने वाले मजदूर हैं, जो कारीगर हैं, जो इंजीनियर हैं, ये सब खाली बैठ जाएंगे, इनमें बेरोजगारी की स्थिति आ जाएगी। अब इनकी आय नहीं हो रही है, जब इनकी आय नहीं हो रही तो सीधी सी बात है कि अब ये बाजार में जाके खरीदेंगे क्या, तो चूंकि अब इनकी क्रय शक्ति कम हो गई तो इसका दुष्प्रभाव भी दूसरे इंडस्ट्री पर जबरदस्त रूप से पड़ेगा। तो इसीलिए इसे कहा गया है साइक्लिक इंडस्ट्री। और भारत जैसे देश में रियल इस्टेट का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि अभी एक तो हमारे यहाँ डेवलपमेंट की बहुत गुंजाइश है। आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ही 2019 तक जो खत्म होने वाला है, आप सोच करके देखिए 89 लाख मकान बनाने की योजना तैयार की गई है, ऑलमोस्ट कह लीजिए 90 लाख मकान। तो जब आप इस तरह से कोई शुरुआत करते हैं तो अर्थव्यवस्था में एक अलग तरीके की जान फूंकते हैं, क्योंकि दूसरे क्षेत्रों में भी उससे हलचल पैदा होने लगती है। और कुल मिलाकर के आप यही देखिए कि लगभग लगभग हमारे जीडीपी का जो 10% है वो रियल एस्टेट से का कंट्रीब्यूशन है 10%, और ये मतलब एक लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक रियल एस्टेट को बढ़ा करके हम जीडीपी में इसके कंट्रीब्यूशन को 13% कर देंगे, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मित्रों ये थोड़ी सी कुछ बातें मुझे आपको रियल एस्टेट के बारे में बतानी थी, और उसको खासकर अर्थव्यवस्था से जोड़कर। तो मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। आज मैं आपको न्यूज़पेपर्स की ढेर सारी क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब अपने अपने ढंग से उन्हें देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, खुशबू कुमारी समस्तीपुर बिहार से, हेत शाह, अभय निगम, कृणाल जोशी और अमित शर्मा, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।